took my पहली responsibility क्या है? तो ये तो मैंने एग्जांपल दी क्योंकि आमतौर पे ये बहुत कॉमन वजह बताई जाती है हज को पोस्टपोन करने के लिए, बल्कि शौक होता है। देखिए शौक वाले को तो कोई कोई जरूरत ही नहीं होती इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। वो तो बहाने ढूंढता है कि नहीं मैं शायद मुझे हज फर्ज हो चुका हो, उसे बल्कि रोकना पड़ता है कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी अभी तुम पे नहीं फर्ज हुआ। उसे तो रोकना पड़ता है कि अभी तुम पे फर्ज नहीं हुआ, ना ये उसे मोटिवेट करना पड़ रहा हो कि नहीं कर लो इस बार हज कि जी तुम्हारे पे माल आ चुका है। तो ये भी अल्लाह ताला देख लेते हैं किसके अंदर ज्यादा शौक है और उतना ही उसको अजर ज्यादा दिया जाता है जिसको ज्यादा शौक है। तो पहली चीज हज की फर्जियत के बारे में, और हज की फजीलत में बहुत सारी रवायात है। वक्त की कमी है क्योंकि पूरे हज का तरीका बताना है, टाइम शॉर्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वही जिक्र कर रहा हूँ। वरना रवायात तो बहुत सारी हैं जो हज की फजीलत और मुख्तलिफ आमाल की फजीलत में। अब हज के सफर के कुछ आदाब, ये जहन में रहे कि कोई भी अमल खूबसूरत बनता है उसके आदाब के साथ, एटिकेट्स के साथ। जिंदगी के हर अमल के कुछ ना कुछ आदाब होते हैं और अल्लाह ताला कुरान में यही बात जिक्र करते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अदब के साथ जिंदगी गुजारो, एटिकेट्स के साथ जिंदगी गुजारो। जैसे कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा किया कि देखे कि कौन अहसन अमल करता है, खूबसूरत अमल करता है, इसलिए तुम्हें पैदा किया। तो हर अमल को करना एक बात होती है, उसको खूबसूरती से करना ये दूसरी चीज होती है। तो खूबसूरत कैसे हज को बनाया जाए, इतना अहम अमल है हमारी जिंदगी का, तो उसमें क्या चीजें अहम है? पहली चीज तो यही कि इंसान को पता होना चाहिए कि कब उस पर हज फर्ज हुआ, इस चीज का मालूमात होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब सफर का हज का इरादा हो तो बेहतर है कि इस्तखारा कर ले। इस्तखारा एक मसनून अमल है, सुन्नत अमल है, और इसका मकसद ये होता है कि कोई डिसीजन जब लिया जाए तो अल्लाह ताला से भी एक मशवरा कर ले। यानी जितना इंसान लोगों की राय लेता है उनसे मशवरा करता है, तो इसी तरह एक अल्लाह ताला से भी इंसान मशवरा कर ले। जाहिर बात अल्लाह ताला की दात सामने मौजूद नहीं है, तो उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बता दिया कि क्या तुमने करना है। वो ये करना है कि तुमने दो नफल पढ़ने हैं, दुआ करनी है, और एक फिर अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे हो जाना है, उसमें क्या बात आती है, इसको इस्तखारा करो। अब इस्तखारा इस बात पर नहीं कि मैं हज करूं या ना करूं, क्योंकि वो तो पैसे आ गए वो तो फर्ज है, वो तो हर सूरत करना है। इस्तखारा इस चीज पे कर लेना चाहिए कि किस सफर में कैसे करो। मिसाल के तौर पर ग्रुप्स, कई ग्रुप्स हैं, इनमें कौन सा ग्रुप्स मेरे लिए बेहतर है, इस चीज पे इस्तखारा कर ले, किस तरह जाना मेरे लिए बेहतर है, या कई मल्टीपल ऑप्शन है, ट्रेन, एरोप्लेन, बस फॉर एग्जाम्पल, हो सकते हैं एप्लीकेबल ना हो, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो मैं किस तरह उनमें चूज करो, इस चीज के बारे में सराहना सुन्नत है कि हज के सफर में जाने से पहले कि सफर के बारे में कि सफर किस तरह करो सुन्नत है। करो ना करो उसकी बात नहीं हो रही, वो तो अगर माल आ गया है और कोई मजबूरी नहीं है तो हज करना फर्ज है। ये जहन में रहे अगर कोई डिपेंडेंट है उस पर, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप उस पर डिपेंडेंट है या बीवी बच्चे डिपेंडेंट है, तो उनका खर्चा निकाल के माल देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक महीना हज पर लगता है जाने आने में, तो अगर इतना खर्चा है कि घर में खर्चा भी चल जाए उन बीवी बच्चों का और पेरेंट्स का, वो निकाल के फिर सफर का खर्चा है या नहीं उनकी, क्योंकि जिम्मेदारी है इंसान के ऊपर अगर वो डिपेंडेंट है। अगर वो इनडिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स इनडिपेंडेंट है, उनका अपने माल है, वो इजी गुजारा करते हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी बच्चे में नहीं है, फिर वो हज को प्रेफरेंस देगा। लेकिन अगर वो कुछ उनके पास थोड़ा सा इनकम नहीं है और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है और ये इस पर डिपेंडेंट है, तब की बात होगी। यहाँ ये बात भी सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि औरत पे हज का फर्ज होता है। औरत पे हज तब फर्ज होता है कि जब उसके पास इतना माल आ गया, उस माल में वो सोना चांदी सब शामिल है जिसके पास पड़ा हो, और वो कैलकुलेट करे, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख एक बंदे का खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल उसके वहां सोना पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए, नकदी बेशक ना हो, सोना पड़ा हुआ। तो अब वो दो बंदों का खर्चा उठा सकती है, अपना और एक महरम का। तो अब उस पर हज फर्ज हो गया, यानी एक एक मर्द पे तो हज तब फर्ज होता है जब वो अपना खर्चा उठा सके, औरत पे हज तब फर्ज होता है जब वो अपना और अपने महरम का खर्चा उठा सके। लेकिन अगर किसी औरत का शौहर फॉर एग्जाम्पल तैयार है, हज करने जा रहे हैं, उसके पास 2.5 लाख का सोना या वो पड़ा हुआ है, तो अब वो उसके पास वो उधर नहीं है कि मेरे साथ कोई महरम नहीं है, अब उससे अभी हज फर्ज अगर उसका महरम तैयार और वो अपना खर्चा उठाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है कि मैं नहीं, अगर तुम मुझे खर्चा दोगी तो मैं जाऊंगा, तो फिर अगर उसके पास उसका खर्चा है तो उससे फर्ज है, उसके लिए जरूरी है कि महरम को तैयार करे कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपका खर्चा उठाती हूँ, आप मेरे साथ चले। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपया लगता है हज के लिए, 5 लाख रुपया जब उसके पास हो जाएगा वो सोने की सूरत में ही हो, तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। तो हज की फर्जियत और फिर इस्तिखारा। उसके बाद इल्म हासिल करना कि हज करते कैसे, ये भी फर्ज है इंसान। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अमल भी करना है, इसको सीखना उस पर फर्ज है, फर्ज ऐन जरूरी है कि हज सीखे जाने से पहले। उसी के लिए ये सेशन रखा कि हज की मालूमात हासिल करना ये फर्ज है। फिर उसके बाद अब जब वो भी मालूमात भी ले ली, तो अब हज की नीयत को दुरुस्त करे कि मैं क्यों हज कर रहा हूं। नीयत को दुरुस्त करने से क्या मुराद है कि कई बार ये होता है कि कोई ताजिर है फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि मैं सऊदी अरब पे ट्रिप लगा लेता हूँ, हज भी हो जाएगा और साथ में कोई अपना बिजनेस डील भी कर रहा हूँ। अब उसकी नीयत खालिस नहीं है हज की, इस तरह गौर करे कहीं मेरी नीयत में मिलावट तो नहीं है, मैं कोई और अमल तो नहीं साथ करना चाह रहा, या मेरी नीयत उसकी भी तो नहीं होगी। तो मैं खालिस अल्लाह के लिए, क्योंकि मुझ पर हज फर्ज हो गया है और वो सारी बातें जो मैं कर चुका हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत का ये हक है कि मैं उसका इजहार करूँ अपनी मोहब्बत जो मुझे अल्लाह से है, तो उस लिए मैं हज करने जा रहा हूँ, अल्लाह के घर को देखने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहा हूँ, ये सारी नीयतें होनी चाहिए। फिर अच्छे अपने साथ कंपेनियंस को तलाश करना जो हज में जाए, क्योंकि एक सफर है, ऑब्वियसली कंपेनियंस का इसमें रोल होता है। सफर के अच्छे होने या बुरे होने में उस जो जो सफर के साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, जो कंपेनियंस होते हैं, उनका असर पड़ता है सफर के ऊपर। तो नेक ग्रुप को चूज करना, इसलिए जब ग्रुप चूज किया जा रहा हो कि इस ग्रुप के साथ मैंने हज करना है, तो देखे कि उनमें कौन लोग जा रहे हैं, क्या वो उनके अंदर कोई दीन का शऊर है, अल्लाह की मोहब्बत का शऊर है, और अगर मल्टीपल ऑप्शन हो, 2-3 ऑप्शन हो, तो उस ग्रुप को चूज करें कि जो कि अल्लाह जिसने दीनदार लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जा रहा हो, ताकि उनका इफेक्ट उस पर पड़े। वरना कई बार गाफिल लोग होते हैं तो हज को खराब कर देते, और ये जो तजर्बाकार लोग हैं उनको उन्होंने देखा इस चीज़ को कि वहां पे दुनिया की बातें, गीबत, चुगली वगैरह चल रही होती है, एतराजात हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हज बिल्कुल खराब हो जाता, और फिर मसाइल को पता नहीं, गलत बातें बताना, इधर तो हज कई बार खराब हो जाता, और वो जो लज्जत मिलती है एक अच्छे हज की वो नहीं मिलती इंसान। इसलिए कंपेनियंस को तलाश करना, अच्छे ग्रुप को चूज करना, ये भी एक पार्ट। फिर जब ग्रुप चूज किया जा रहा है, तो अब उस ग्रुप में जो माल लगे कुछ करे वो हलाल माल, खुद अपने माल पे नजर डालें। मिसाल के तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं है माल जो मैं बैंक में फिक्स कराया हुआ है, जो वो तो नहीं है, उस पर सूद के पैसे तो नहीं है इस माल में जो मैं हज के लिए दे रहा हूँ, अगर है तो उस पर गौर करो। इसी तरह कहीं मैंने कोई डील ऐसी की जिसमें धोखा दे दिया, ये उसकी माल तो नहीं आया हुआ। फिर कहीं मैंने कोई जॉब में पिछले एक माह की पे तो इसमें शामिल की, और मुझे पता है उस पे में या उस महीने में मैं एक दिन नहीं गया था जॉब पे, तो वो मेरी उस दिन की पे हराम हो गई है, तो कहीं वो तो नहीं इसमें शामिल। इसका पूरा एक एक स्क्रूटनी करे अपने उस माल की, और उल्मा ने यहाँ तक लिखा कि उसे है कि मिला जुला माल है, मुश्तबे माल जैसे कहते हैं, तो फिर वो ये करे कि किसी काफिर को वो माल दे, उससे कर्ज ले ले, और उससे कर्ज ले और उस कर्ज को हज के लिए जमा कराए। यानी काफिर से कहे कि मुझे कर्ज दे दो, किसी भी यानी कि दोस्त कोई हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसे कहो मुझे कर्ज दो फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख, और वो हज के लिए जमा कराए, और उस मुश्तबे माल को कर्ज के को लौटाने में इस्तेमाल करें, हज के लिए उसमें माल ना यूज करें।